मैं मानता हूं आज हिंदुस्तान को यही आवश्यकता है कि हम जमीन पर कैसे चले, ये पहले हमें समझने की आवश्यकता है। सरदार पटेल ये किसान के लड़के थे, किसान के नेता थे। गांधी जी ने बड़े बड़े महान सिद्धांत हमारे सामने रखे थे, लेकिन मुझे याद है मैं एक किसान कार्यकर्ता था तो आंखों के सामने साफ कुछ आता नहीं था कि हम स्वराज कैसे मिला है। ठीक बात थी कि वो हमारा दिल जमा करने की कोशिश कर रहे थे, बना रहे थे। सरदार पटेल ने जो बारडोली में दिखाया वो उस वक्त वो नहीं दिखलाते तो हम क्या कर सकते, मेरे समझ में तो बात नहीं आती कि जनता की संगठना करे, ये तो लफ्ज है खाली, लेकिन किस खूबी से करे, किन रास्ते से करे, कौन सी मेथड्स उस काम के लिए ले, ये रास्ता सरदार पटेल जी ने बारडोली में दिखलाया। ये आजादी का आंदोलन जब चला था तो उस वक्त उन्होंने जो किया काम वो भी हमारे सामने है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी उनकी हमारे नजर आई आजादी के बाद, और जो उन्होंने किया है, कहा है कम लेकिन उन्होंने किया है कितना। मैं करीब दो दिन राजस्थान के सीमा पर था और वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर उन एरिया में मैं घूमता रहा था तो मेरे मन में ख्याल आने लगा कि इन रियासतों को सरदार जी ने हिंदुस्तान में नहीं मिलाया होता तो आज हम क्या करते हिंदुस्तान में। मेरे मन में पहले से ख्याल था कि जूनागढ़ में सरदार जी ने जिस खूबी से काम किया वो खूबी से हम काम नहीं करते तो हिंदुस्तान के किनारे पर बहुत हमें धोखा होता। याद है मुझे, मैं सौराष्ट्र में घूमता था कई सालों के पहले, तब वहां के लोग कहते थे, आज उसकी याद आती है मेरे मन में, लेकिन लोगों के पास से मैंने सुनी है बात, वो कि जब सरदार जी ने जूनागढ़ में आजाद सरकार बनाते हुआ कुछ सेना के साथ, वो वॉलंटियर सेना थी, जो आज की आर्मी जैसे कहते वैसे तो नहीं थी, लोगों की सेना बनी थी, और लोगों की सेना जब वो जूनागढ़ में घुस गई तो आज बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो पाकिस्तान का भूतो वहां था, कुछ काम के लिए उनका सरदार के नाते वहां था, भाग गया अपने लड़के को पीछे भेजते। आज बड़ी बात चलाई उन्होंने, लेकिन सरदार की बनी हुई एक नकली सेना भी चले गई तो उसे देख के वो भाग गया, आज बड़ी बातें न्यूयॉर्क में बैठ के ठंडी ठंडी हवा में कर रहा है। वहां मैं इस बात का जिक्र इसलिए किया कि जो किया सरदार जी ने उस वक्त, ये खाली बहादुरी का काम नहीं था कि जिसका नतीजा सदियों के बाद हमारे नजर आएगा। हैदराबाद में सरदार जी ने जो किया वो नहीं किया होता आज क्या होती स्थिति, मन में सोचने की बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ युद्ध करे हो ये तो भविष्य कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध के लिए युद्ध ये हिंदुस्तान में कभी माना नहीं, आज भी नहीं माना जाता, लेकिन ये तो बात साफ है कि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान की मांग तैयार की, जिस तरह से वो बनता गया और जिस तरह से वो आज बर्ताव करता आता है, एक बात तो साफ है, एक फौजी तानाशाही है वहां, एक सांप्रदायिक हवा वहां बनी हुई है, और बड़े बड़े देशों के हथियार हाथ में है, जिनके हाथों में बड़े बड़े देशों के हथियार, मन में सांप्रदायिकता और अपने सर में अपने तानाशाही की शक्ति की धुन, क्या हो सकता है, युद्ध ही हो सकता है, दूसरी कुछ बात हो ही नहीं सकती। ऐसे पाकिस्तान के साथ हमें रहना है पड़ोसी के नाते, हम पड़ोसी के नाते रहना चाहिए, लेकिन पड़ोसी को ही वक्त आता है और उसके मन में कोई दुश्मनी की बात आती है तो समझाने की शक्ति होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे पड़ोसी होते हैं जो लफ्जों से मानते नहीं, मैं तो इस बात पर भरोसा करने वाला नहीं, गाली से गाली हम नहीं देना चाहते, देना ही नहीं चाहिए। हम तो जैसे कहते हैं हिंदी की कवायद है कि हाथी चढ़ते हैं अपने चाल, कुतरे भुकते हैं भुकवा दो, हम गाली से गाली नहीं देंगे लेकिन गोली से गोली का जवाब जरूर देंगे हर चीज। ये कुछ मैं लड़ाई की हवा बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ हमारी एक नीति है वो नीति तो आपके सामने रखना चाहिए, और जो नीति हमें सरदार जी ने दी वो नीति तो यही थी कि वो इस रास्ते से चलना चाहते थे कि जिससे वो अपना देश बनाए, और वो देश बनाने का काम आज भी जारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात साफ कि जब पाकिस्तान देना चाहिए न देना चाहिए हवा चलती थी, जिसका जिक्र हुआ आज भी हमारे एक बड़े नेता ने किया, पता नहीं उनके क्या ख्याल थे, लेकिन मुझे याद है उस वक्त जो कुछ बातें चलती थी, आर्ग्यूमेंट दलील चलती थी एक दूसरे के साथ, तब एक बात आई थी उस वक्त पाकिस्तान बनने के पहले कि हम इस तरह पाकिस्तान बनाएंगे तो सऊदी नजर से क्या होगा। आज जिस ख्याल से हम पूरे सवाल को देख रहे हैं, उस वक्त यही बात आई थी कि देश बनता है तो देश बनने के वक्त जो देश की सीमाएं बनती है तो सीमाएं दुर्बल न हो ऐसा देश बनना चाहिए, लेकिन धर्म के और मजहब के बुनियाद पर जब देश बनता है तो सीमा तो दुर्बल होने वाली, तो सीमा दुर्बल हो तो सेना सबल हो, और सीमा सबल हो तो सेना दुर्बल हो तो चलती भी है बात। लेकिन जब हमने पाकिस्तान के साथ बंटवारा किया तो हमने ये बात मानी कि हम दुर्बल सीमा को मंजूर करते हैं, दुर्बल सीमा को मंजूर करने के बाद देश की यह जिम्मेदारी है कि उसको सेना की शक्ति फौजी शक्ति बड़ी ताकत से रखनी चाहिए, और यही काम हमेशा के लिए हिंदुस्तान को करना पड़ेगा, यह मेरा ख्याल है। आज का युद्ध विराम हो रहे न रहे क्या हो देखते रहेंगे, कि आज कश्मीर की बात पूरी हो न हो क्या हो देखते रहेंगे, हम कौन कश्मीर हमसे लेता है देखने वाले हैं हम वो भी बात, फिर भी लेकिन यह सवाल हट जाए न हट जाए, लेकिन लंबी नजर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुर्बल सीमाएं हमने मानी है। आपकी सेना आप बात नहीं समझते लोग हिंदुस्तान के, माफ कीजिए मुझे दिल्ली वालों से मैं बात करता हूं, मुझे माफ कीजिए कि हम सीमाओं की बातें करते हैं देश की बातें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की क्या सीमाएं हैं पता नहीं हमें। ये हिमालय की तरफ तो ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ जाइए कहां सीमा शुरू होती है कहां बंद होती जाती है, कहीं डेजर्ट में है कभी पहाड़ों में है कहीं नदी में है, और हजारों मील की पूरी सीमा आज जागृत बनी है, और हम इंच इंच जमीन की रक्षा करने की बात भी करते हैं, और करना भी क्या उसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो ऐसी देश की सीमा जब हमने स्वीकृत की है और फिर उसमें ज्यादा है कहीं हजारों मील का हमारा समंदरी किनारा, इस सबकी हमें रक्षा करनी है, तो जिन महापुरुषों ने यह देश बनाया उन्होंने अपने मन में कुछ बातें रखी थी, और सरदार पटेल जी ने देश की जो एकता की उसकी एक पॉलिटिकल यूनिटी की बात तो है ही, जो हमारा नक्शा साफ नजर आता है अंदर से। लेकिन जब मैं आज सोचता हूं फौजी नजर से मिलिट्री स्ट्रेटेजी की नजर से जब हिंदुस्तान की सीमाओं की तरफ मैं देखने की कोशिश करता हूं तो फिर मन में ख्याल आता है कि हिंदुस्तान के रियासतों को एक जगह लाने की जो कार्रवाई सरदार पटेल जी ने की वो हिंदुस्तान के रक्षा के लिए एक बड़ी भारी बात की, इसमें कोई शक मेरे मन में, और इस काम के लिए हमेशा के लिए हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की जनता ने उनकी उनके लिए कृतज्ञता माननी चाहिए। इतना भारी काम है, देश बनता है लेकिन बनने के बाद उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दूसरों को छोड़ी जाती है। हमारे उन नेताओं ने तो यही काम किया, महात्मा जी ने सरदार पटेल जी ने पंडित जवाहरलाल जी ने देश को बनाया, और देश बना के सब नई पीढ़ी के हाथों में दिया है कि उनकी रक्षा कीजिए। हम सच नागरिक हो हिंदुस्तान के सम भारत के सपूत हो सुकन्या हो तो हम ऐसे मौके पर यही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कितनी ही कीमत देने का वक्त आया तो देने के लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र भारत का लहरता हुआ तिरंगा हमेशा के लिए लहरता रहेगा। जय हिंद।